दीवा अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में पीलिंग आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वहां उसकी मुलाकात आर्यांश से होगी। हालांकि पृथ्वी कपूर ने हमेशा से आर्यांश की मदद करने से मना किया था, पर दीवा को अब तक यही लगता था कि आर्यांश कहीं दूर एक अच्छी लाइफ बिता रहा होगा। जब उसने आर्यांश को वहां इस तरह बुरे हालातों में देखा तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही आर्यांश कपूर है जो अपने पैसों के दम पर किसी को भी खरीदने की ताकत रखता था। ऐसा नहीं था कि आर्यांश को इस तरह की जिंदगी बिताने की जरूरत थी, लेकिन उसने ये सजा और जिंदगी खुद चुनी थी। सुबह के 4 बजे के करीब आर्यांश अपने नाइट शिफ्ट से घर वापस आ रहा था। पूरी रात ठंड में काम करने के बाद वो पूरी तरह थक चुका था और घर आते ही सीधा अपने कमरे में लगे गद्दे पर पसर गया था। आर्यांश ने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने दीवा का चेहरा घूम गया था। कुछ घंटे पहले ही आर्यांश हमने वक्त बाद दीवा से मिला था। आई होप कि ये बस एक कोइंसिडेंस हो, इस जगह पर विजिटर्स आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा ठंड से चिढ़ है, फिर तुम यहाँ घूमने के लिए क्यों आई हो? मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और तुम्हारे सामने नहीं आया, पर आज तुम्हें वापस देखने के बाद खुद पर काबू कर पाना मुश्किल है, आर्यांश ने मन ही मन कहा। आर्यांश की आंखों के सामने दीवा के साथ बिताए हुए लम्हे किसी पिक्चर की तरह घूमने लगे थे। जब भी वो दीवा के बारे में सोचता तो उसकी सोच वहीं पर आकर रुकती जब उसकी वजह से दीवा का मिसकैरेज हुआ था। यही वजह थी कि आर्यांश उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता था, पर आज ना तो उसका दिल उसके काबू में था और ना ही दिमाग। इतना ज्यादा काम करने के बाद भी जब आर्यांश को नींद नहीं आई और बार बार वो दीवा के बारे में सोच रहा था तो आर्यांश झुंझलाकर उठ गया था। वो सिर पकड़कर गहरी सांस लेकर बोला, मुझे रेस्ट चाहिए और सोने के लिए यही 4-5 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन आज तो ये भी नसीब में नहीं है। आर्यांश उठा और सोने के बजाय घर के छोटे मोटे काम निपटाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ सुबह 7 के करीब अलार्म की आवाज़ सुनकर दीवा की नींद टूटी। आज उसे बाकी टीम के साथ अस्पताल में रिपोर्ट करना था। दीवा ने अपने साथ शिव को भी उठाया और उसे तैयार करके हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, जहां नाश्ते के नाम पर दीवा बस ब्रेड पर जैम लगाकर शिव को दे रही थी। शिव ने मुंह बनाकर दीवा की तरफ देखा तो उसने कंधे उचकाकर कहा, फिलहाल इसी से एडजस्ट कर लो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऊपर से यहाँ कुछ सामान भी नहीं है। एक शर्त पर, मुझे लंच ब्रेक में अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, शिव ने अपनी डिमांड दीवा के सामने रखी। ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बड़ा रेस्टोरेंट होगा, वैसे भी बाहर का खाना खाना हेल्दी नहीं है, दीवा ने शिव को समझाने की कोशिश की। बड़ी रेस्टोरेंट का नहीं, अच्छे रेस्टोरेंट का कहा है, देखा जाए तो आप मुझे ब्रेड और जैम दे रही हैं, आप एक डॉक्टर है तो आपको अच्छे से पता है क्या हेल्दी है क्या नहीं, शिव ने जवाब दिया और फिर दीवा के हाथ से ब्रेड लेकर खाने लगा। दीवा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो गहरी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाकर बोली, मेरी ही गलती है जो इसे हर छोटी चीज के बारे में बताती रहती हूँ, कुछ ज्यादा ही मैच्योरली बिहेव करने लगा है। दीवा ने शिव के साथ नाश्ता किया और फिर शिव को साथ लेकर अस्पताल पहुंच चुकी थी। जैसा दीवा और बाकी लोगों ने सोचा था, अस्पताल की बिल्डिंग अच्छी खासी थी, लेकिन वहां पर सुविधाएं ना के बराबर थी, कुछ खास मेडिकल स्टाफ भी नहीं था। पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी हुई थी और थोड़ी ही देर में संजीवनी हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ वहां कम फैसिलिटी में चीजें हैंडल करते हुए परेशान हो चुका था। वो सब दीवा के सामने कमरे में खड़े हुए थे और अपनी अपनी शिकायतें रख रहे थे। इक्विपमेंट्स भी ठीक से नहीं है, एक जूनियर डॉक्टर ने कहा। नॉर्मल टेस्ट करने के लिए भी मशीन अवेलेबल नहीं है, हमें उन्हें बाहर भेजना पड़ रहा है, ऊपर से कुछ पेशेंट सीरियस कंडीशन में आते हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम उन्हें बाहर रेफर करने का बोल सके, दूसरे ने कहा। दीवा एक एक करके उन सबकी शिकायतें सुन रही थी, वो उनकी सीनियर थी तो उसे ही सब कुछ मैनेज करना था। वो सब दीवा से सोल्यूशन की ही उम्मीद कर रहे थे। उन सबकी बातें सुनने के बाद दीवा ने सख्त आवाज में कहा, देखिए ये हम पहले से जानते थे कि यहाँ पर इतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तभी हमें यहाँ पर भेजा गया है ताकि हम इसे बेहतर बना सकें। जिस चीज़ की कमी है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करके ही तो हमें आगे देना है। अगर आप लोग इस तरह एक ही दिन में परेशान हो जाओगे तो हम इस जगह को कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे, यहाँ के लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन एक डॉक्टर ने फिर से बोलना चाहा, लेकिन दीवा ने उसे सख्त निगाहों से देखा तो वो शांत हो गया था। रिमोट एरियाज में हम लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, वहां तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती है, सब कुछ हमें हैंडल करना पड़ता है, तो ये सोच लीजिए कि ये किसी तरह का मेडिकल कैंप है। उम्मीद है कि इस तरह शिकायत लगाने के बजाय आप अपने काम को बेहतर करने का सोचेंगे। रही बात टेस्ट और बाकी चीज़ों की, तो अगर किसी पेशेंट को सीरियसली उसकी तुरंत नीड है तो उन्हें बाहर की लैब से ये करवाने के लिए कहिए, दीवा ने उन सबको समझा कर वहां से भेज दिया था। उनके जाते ही दीवा चेयर पर बैठी और उसने अपना सिर पकड़ लिया था। उसके सिर में दर्द हो रहा था तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनकर दीवा ने तुरंत सामने की तरफ देखा, कोई नया पेशेंट आया था। अंदर आ जाइए, दीवा ने तेज आवाज में कहा। कुछ ही देर में पेशेंट धीमे कदमों से चलकर उसके सामने आ चुकी थी। दीवा ने सामने की तरफ देखा तो एक साथ उसके चेहरे पर कई भाव उभर आए थे। वो हैरान थी, इतने टाइम बाद उन्हें देखकर खुश थी और साथ ही उनकी हालत देखकर दुखी भी। सुमन माँ आप बैठिए, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। दीवा जल्दी से उठी और उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया था। सुमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे दीवा अच्छे से याद थी। इतने टाइम बाद आपको यहाँ देखकर खुशी हो रही है मिस गोयनका, मुझे नहीं पता था कि इस नई मेडिकल टीम में आप भी हैं, सुमन ने धीमी आवाज में कहा। सुमन को वहां देखकर दीवा को ये समझते देर नहीं लगी कि रात को आर्यांश अपनी जिस माँ के लिए दवाई लेने आया था वो सुमन ही थी। उनकी तबीयत पहले भी खराब रहती थी, बीते सालों में सुमन और भी कमजोर हो गई थी। वो आपका बिल्कुल भी ठीक से ख्याल नहीं रख रहा है, आपको इस वक्त प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है जो रिमोट एरिया में कभी नहीं मिल सकता, दीवा ने गुस्से में धीरे से बड़बड़ाकर कहा और सुमन का चेकअप करने लगी। सुमन ने उसकी बात सुन ली थी और दीवा की बातों के पीछे के तंज को भी वो अच्छे से समझ गई थी। आप गलत कह रही हैं मिस गोयनका, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और मेरे ट्रीटमेंट के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, सुमन ने जवाब दिया। वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है, पूरा चेकअप करने के बाद दीवा बोली और उसने कुछ टेस्ट लिखते हुए कहा। मुझे आपकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं लग रही है, उसे बोलिए कि ये जरूरी टेस्ट करवा लेगा, यहाँ अभी फैसिलिटी नहीं है तो बाहर की लैब या किसी पास के शहर से करवाने होंगे। क्या ये ज्यादा महंगे हैं, अचानक सुमन के मुंह से निकला। एक पल के लिए दीवा भी चौंक गई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि कल मेडिकल स्टोर पर वो औरत भी पिछली दवाइयों के पैसे मांग रही थी। दीवा ने गहरी सांस ली और कहा, क्यों ना मैं आपको लैब लेकर चलूं? लेकिन आप नहीं, सही नहीं रहेगा, आप मुझे दवाई दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा। दीवा से मदद लेते हुए उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। दीवा ने प्यार से सुमन के हाथ पर हाथ रखा और कहा, याद है ना मैं भी आपको सुमन माँ कहती थी, और फिर क्या मेरा हक नहीं बनता है आपका ख्याल रखने का?
ठीक है फिर, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको भी मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना होगा। मुझे आज भी याद है कि आपको मीठा खाना पसंद है, मैंने कुछ नया भी बनाना सीखा है, सुमन ने मुस्कुराकर कहा। दीवा मना करके सुमन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर साथ ही वो आर्यांश के सामने भी नहीं जाना चाहती थी। सुमन के ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब यही था कि आर्यांश से मिलना। अगर इस वक्त दीवा मना करती तो सुमन भी उसके साथ नहीं जाने वाली थी। फिलहाल तो मैं यहाँ सेटल करने और काम में बिजी हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके घर जरूर आऊंगी, दीवा ने जवाब दिया। सुमन ने हल्के से सिर हिलाया और अपना घर का पता और फोन नंबर लिखकर वहां से जा चुकी थी। सुमन की हालत देखने के बाद दीवा को आर्यांश पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, मैंने उसे इतना इर्रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं देखा, दीवा झुंझलाकर बोली। मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है, वैसे भी वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कौन सा किसी से पूछता है, और अभी भी अपनी मनमानी कर रहा है, मुझे क्यों उसकी फिक्र हो रही है? बस सुमन माँ की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, बाकी मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, वो एक हिपोक्रेट इंसान के अलावा और कुछ नहीं है। आर्यांश को अच्छा खासा कोसने के बाद दीवा को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। दोपहर के 2 बजे के करीब वो थोड़ा फ्री हुई तो शिव की जिद करने पर दीवा को उसे पास ही के रेस्टोरेंट में लेकर जाना पड़ा। दीवा के साथ 2 और लड़कियां थीं, जिनमें एक जूनियर डॉक्टर तो दूसरी नर्स थी। उनके साथ दीवा के रिश्ते ठीक ठाक थे। रेस्टोरेंट पहुंचकर उन्होंने कोने की सीट ली। दीवा ने शिव की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा, जो खाना है वही ऑर्डर करना और कुछ भी वेस्ट मत करना। योर ऑर्डर प्लीज। जैसे ही दीवा को आवाज़ सुनाई दी तो उसने सामने की तरफ देखा। उसके सामने एक बार फिर आर्यांश खड़ा हुआ था जो उनका ऑर्डर लेने के लिए आया था। वहीं आर्यांश भी एक बार फिर दीवा को अपने सामने देखकर अपनी जगह पर जमसा गया था। वो दोनों एक दूसरे से जितना दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर रही थी। किस्मत तो लाकर खड़ा करे या ना करे, लेकिन राइटर जरूर कर रही है। जोक सपाट, चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं, और प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो, ना तो आप सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ा रहे हो और ना ही अप्रिशिएट करते हो।